लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है दिव्य करुणा के मिस बलिदान में कार्डिनल पारोलिन का प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुत है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। युवाओं की जयंती के अवसर पर वैटिकन राज्य के सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने 2,00,000 युवाओं के लिए युखारस्तीय बलिदान अर्पित किया। कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने मिस्सा बलिदान के दौरान अपने प्रवचन में कहा कि यीशु अपने शिष्यों को अंतिम व्यारे की कोठरी में दिखाई देते हैं, जहां वे भय के मारे बंद थे। वे अपने में मानसिक रूप से विचलित और हृदय को दुख से बोझिल पाते हैं, क्योंकि उनके स्वामी और चरवाहे जिनका अनुसरण उन्होंने किया था, उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। वे अपने में भयावह अनुभूति से होकर गुजर रहे होते हैं। वे अनाथ, अकेला, खोया, भयभीत और असहाय अनुभव करते हैं। पास्का के दूसरे रविवार को सुसमाचार के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला दृश्य हमारी मानसिक स्थिति, कलीसिया और पूरी दुनिया की परिस्थिति को भी व्यक्त करता है। चरवाहे संत पापा फ्रांसिस को, जिसे ईश्वर ने अपने लोगों के लिए दिया था, पृथ्वी पर अपने जीवन को समाप्त कर हमसे विदा हो गए हैं। इस विदाई का दुख हमें बोझिल करता है। हम अपने हृदय में उथल पुथल विस्मय का अनुभव करते हैं। हम अपने में प्रेरितों की भांति दुख का अनुभव करते हैं, जो यीशु की मृत्यु से दुखित थे। कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने कहा कि यद्यपि सुसमाचार हमारे लिए इस विशेष परिस्थिति में इस बात का जिक्र करता है कि जीवन के ऐसे अंधेरे में ईश्वर पुनरुत्थान की रोशनी बनकर आते और हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं। वे हमें इसके बारे में सदैव याद दिलाते हैं, जिसकी चर्चा उन्होंने अपने विश्व प्रेरितिक पत्र एवेंजेली गौडियम में की, जो उनके परमाध्यक्षीय काल का केंद्र बिंदु था। सुसमाचार की खुशी उनके हृदयों और जीवन को आनंद से भर देती है, जो यीशु से मिलते हैं। वे जो उनसे मिलने वाली मुक्ति को स्वीकारते हैं, वे अपने पापों, दुखों, आंतरिक खालीपन और अकेलेपन से मुक्त किए जाते हैं। यीशु में हम आनंद को सदैव नवीन होता पाते हैं। पास्का की खुशी, जो दुख और परीक्षा में हमें सबल बनाए रखती है, अपने में वह चीज है जिसका स्पर्श हम आज इस प्रांगण में करते हैं। कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने कहा कि आप स्वयं अपने चेहरे में इसे देख सकते हैं, जो विश्व के विभिन्न स्थानों से युवाओं की जयंती हेतु यहाँ जमा हुए हैं। आप बहुत सारे स्थानों से आए हैं, इटली के विभिन्न धर्म प्रांतों से, यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से लेकर एशिया, संयुक्त राज्य अमीरात, आपके साथ सारी दुनिया यहाँ सचमुच में उपस्थित है। कार्डिनल ने सभी युवाओं को कलीसिया की ओर से संत पापा फ्रांसिस का आलिंगन प्रेषित किया, जो उनसे मिलने की चाह रखते थे। उनकी आंखों में देखना और उनका अभिवादन करते हुए उनके बीच में आने की चाह रखते थे। उन्होंने आज के परिवेश में बहुत सारी चुनौतियों के माध्यम 2 चुनौतियां, तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमता, जिन्हें युवाओं को सामना करने की जरूरत है, का जिक्र करते हुए कहा,
Non dimenticate mai di alimentare la vostra vita con la vera speranza.
आप यीशु ख्रिस्त में मिलने वाले जीवन की सच्ची आशा से अपने को पोषित करना ना भूलें। उनसे महान या उनके सामने कोई भी चुनौती बड़ी नहीं हो सकती है। उनमें आप कभी भी अकेले या परित्यक्त नहीं होंगे, जीवन की सबसे बुरी परिस्थिति में भी नहीं। आप जहां कहीं भी हैं, वे आपसे मिलने आते हैं। अपने अनुभवों, विचारों, उपहारों और सपनों को साझा करने हेतु वे आपको साहस प्रदान करते हैं। वे आपके बीच एक भाई और बहन के माध्यम आते हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, जिन्हें आप बहुत कुछ दे सकते हैं और पा सकते हैं, जो आपको अपने जीवन में उदार, विश्वसनीय और उत्तरदायी होने में मदद करते हैं। वे आपको जीवन की अति मूल्यवान बातों को समझने में मदद करने की चाह रखते हैं, जो कि प्रेम है, जो सारी चीजों को अपने में ढक लेता और सारी चीजों की आशा में बने रहता है। आज पास्का के द्वितीय रविवार को हम दिव्य करुणा का त्योहार मनाते हैं। कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने कहा कि यह विशेषकर पिता की करुणा है, जो हमारी कमजोरियों और सीमाओं से कहीं अधिक बड़ी है, जिसे हम संत पापा फ्रांसिस के धर्म सिद्धांत और प्रेरित कार्य के सार स्वरूप पाते हैं। सुसमाचार की घोषणा, ईश्वर की करुणा को साझा करना और उसे घोषित करना उनके परमाध्यक्षीय काल का मुख्य बिंदु रहा। उन्होंने हमें इस बात की याद दिलाई कि दया ईश्वर का नाम है, और इसलिए कोई भी ईश्वर के करुणामय प्रेम को एक सीमा में बांधकर नहीं रख सकता है, जिसके द्वारा वे हमें अपने लोगों को उठाने और नवीन बनाने की चाह रखते हैं। हमें इस अमूल्य निधि को अपने में वहन करने की जरूरत है। कार्डिनल पारोलिन ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस के प्रति हमारा प्रेम, जिसे आज हम अनुभव करते हैं, अपने में केवल मनोभाव ना रहे, बल्कि हम उनकी शिक्षा को अपने जीवन का अंग बनाएं। हम अपने को ईश्वर की करुणा हेतु खोलें और एक दूसरे के प्रति करुणावान बने। करुणा हमें वापस विश्वास के हृदय की ओर ले चलती है। यह हमें इस बात की भी याद दिलाती है कि हमें ईश्वर के संग और मानव के रूप में कलीसिया के संग अपने संबंध को परिभाषित करना नहीं है। हमारे लिए सुसमाचार सर्वप्रथम ईश्वर के प्रेम का अनुभव करना है, जो हम में से हर एक को अपनी कोमलता और करुणा में अपनी अच्छाइयों और कमियों के बावजूद प्रेम करते हैं। यह हमें इस बात की भी याद दिलाती है कि हमारा जीवन करुणा के ताने बाने से बना है। हम केवल गिरने के बाद ही उठते और भविष्य की ओर देखते हैं कि कोई है जो हमें शर्तहीन प्रेम और क्षमा करता है। अतः हम अपने जीवन को अपने स्वार्थ के अनुरूप नहीं, बल्कि दूसरों के संग खुली वार्ता में जीने हेतु बुलाए जाते हैं। हम दूसरों का स्वागत करते हुए उनकी गलतियों और कमजोरियों को क्षमा करने को कहे जाते हैं। केवल करुणा हम में चंगाई लाती और एक नई दुनिया का निर्माण करती है। यह अविश्वास की आग, घृणा और हिंसा को अपने से दूर करना है, जैसे कि संत पापा फ्रांसिस ने हमें बतलाया है। कार्डिनल ने कहा कि यीशु ने हमें पिता के इस करुणामय चेहरे को घोषित करते हुए अपने कार्यों में उसे पूरा किया। इससे भी बढ़कर हमने सुना, जब वे पुनरुत्थान के बाद अपने को अंतिम व्यारी की कोठरी में प्रस्तुत किया, तो उन्होंने शांति का उपहार देते हुए कहा, यदि तुम दूसरों के पापों को क्षमा करोगे तो वे क्षमा किए जाएंगे, यदि तुम उन्हें क्षमा नहीं करोगे तो वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। इस भांति पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों कलीसिया को निर्देश दिया कि वे मानवता हेतु करुणा के साधन बने, उनके लिए जो ईश्वर के प्रेम और क्षमा को ग्रहण करने की चाह रखते हैं। संत पापा फ्रांसिस एक उस कलीसिया के चमकते साक्ष्य थे, जो करुणा में उनके लिए झुकती है, जो घायल हैं और जो दया के मलहम से चंगाई प्राप्त करते हैं। उन्होंने हमें इस बात को समझाया कि दूसरों को पहचान प्रदान करने के बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। हम दूसरों को क्षमा और ईश्वर की करुणा दिखाए बिना, जैसे कि उन्होंने हमारे साथ किया, शांति के वाहक नहीं बन सकते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, दिव्य करुणा के रविवार को हम विशेष रूप से संत पापा फ्रांसिस की याद करते हैं। वास्तव में ऐसी यादें वैटिकन के कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं के बीच विशेष रूप से ज्वलंत हैं, जिनमें से कई यहाँ मौजूद हैं। मैं उनकी दैनिक सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सभी को, पूरे विश्व को, संत पापा फ्रांसिस स्वर्ग से आलिंगन प्रदान करते हैं। कार्डिनल पारोलिन ने सबों को धन्य कुमारी मरियम को सुपुर्द किया, जिनके प्रति संत पापा फ्रांसिस की विशेष भक्ति थी, जिन्होंने अपने दफन हेतु संत मरिया मेजर के महागिरजा घर का चुनाव किया।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पास्का के दूसरे रविवार यानी दिव्य करुणा रविवार की शाम को कार्डिनल मंडल के सदस्यों ने संत मरिया मेजर महागिरजाघर का दौरा किया, संत पापा फ्रांसिस की कब्र पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके बाद उन्होंने शाम की प्रार्थना की, जिसका नेतृत्व महागिरजाघर के सहायक प्रधान याजक कार्डिनल रोलांडा माकारिकास ने किया। कार्डिनलों के साथ विश्वासियों ने भी संध्या प्रार्थना में भाग लिया। मरिया मेजर महागिरजाघर सुबह 7 बजे विश्वासियों के लिए खुल गया था, ताकि वे संत पापा फ्रांसिस की कब्र का दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। संध्या प्रार्थना के दौरान संत पापा की कब्र पर लोगों का दर्शन जारी रहा। अनुमान है कि सुबह से शाम तक 20,000 विश्वासी संत पापा फ्रांसिस की कब्र का दर्शन कर चुके थे और जनवरी के मध्य में अस्पताल में भर्ती होने से 1 महीने पहले दिवंगत संत पापा फ्रांसिस ने एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने युवा लोगों को सुनने के महत्व के बारे में याद दिलाया। 8 जनवरी को रिकॉर्ड किए गए एक पहले से न देखे गए वीडियो में दिवंगत संत पापा फ्रांसिस श्रवण कार्यशालाओं में भाग लेने वाले युवाओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पहल की शुरुआत इटली में लुका ड्रासिनियन द्वारा की गई थी और यह युवाओं और वयस्कों को विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है, ताकि दूसरों द्वारा सुने जाने और दूसरों को सुनने की सुंदरता की खोज की जा सके। यह वीडियो रविवार को इतालवी साप्ताहिक पत्रिका ओजी अर्थात आज द्वारा दिवंगत संत पापा के अंत्येष्टि मिस्सा के एक दिन बाद प्रकाशित किया गया। अपने निवास कासा सांता मार्ता में रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने युवाओं से हमेशा अपने दादा दादी की बात सुनने का आग्रह किया। वे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। संत पापा ने कहा, प्यारे लड़कों और लड़कियों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है सुनना, सुनना सीखना। जब कोई आपसे बात करता है तो उसके खत्म होने का इंतजार करें, ताकि आप वास्तव में समझ सकें और फिर अगर आपको ऐसा लगता है तो जवाब दें, लेकिन महत्वपूर्ण बात है सुनना। बहुत से लोग दूसरों की बात को ठीक से नहीं सुन पाते, क्योंकि वे दूसरे व्यक्ति के बोलते ही अपनी प्रतिक्रिया तैयार कर लेते हैं। उन्होंने कहा, लोगों को ध्यान से देखिए, लोग सुनते नहीं हैं। किसी स्पष्टीकरण के बीच में ही वे जवाब दे देते हैं और इससे शांति में मदद नहीं मिलती। सुनिए, बहुत सुनिए। संत पापा का वीडियो संदेश रोम में किशोरों की जयंती मनाने के लिए लाखों किशोर एकत्रित हुए थे, उसी समय इसे जारी किया गया। नोवेम दियालिस के दूसरे दिन अर्थात दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के लिए 9 दिनों के शोक के लिए मिसा में भाग लेने करीब 2 लाख लोग संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित थे। हालांकि दिव्य करुणा रविवार को पवित्र मिसा दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की आत्मा की अनंत शांति के लिए रखा गया था, कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन ने युवाओं को करुणा पर दिवंगत संत पापा की शिक्षा को अपनाने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे अपने व्यक्तिगत संबंधों और पूरी दुनिया के लिए शांति का मार्ग खोज सकें। किशोरों की जुबली 25 से 27 अप्रैल को हुई, जिसमें दुनिया भर से आए हजारों युवाओं ने रोम में हो रहे कार्यक्रमों में भाग लिया। उधर इतिहासकार डोनाल्ड के अनुसार संत पापा फ्रांसिस का संत मरिया मेजर महागिरजाघर में दफन होने का निर्णय आश्चर्यजनक है, लेकिन नया नहीं है। उन्होंने इस साक्षात्कार में संत पापा के दफन स्थानों के महत्व पर विचार किया। शनिवार को संत पापा फ्रांसिस 120 से अधिक वर्षों में संत पेत्रुस महागिरजाघर के परिसर के बाहर दफन होने वाले पहले संत पापा बन गए। इतिहासकार डोनाल्ड ने वाटिकन न्यूज को बताया कि 266वें परमाध्यक्षों के कार्यकाल के दौरान कई दफन स्थान रहे हैं। जब कोई कैथोलिक संत पापा की मृत्यु के बारे में सोचता है तो वह संत पेत्रुस महागिरजाघर की ओर आकर्षित होता है, और यह सच है कि पहले ख्रिस्तीय सम्राट कॉन्स्टेंटीन द्वारा निर्मित मूल गिरजाघर संरचना से पहले कलीसिया के इतिहास में आधे से अधिक परमाध्यक्ष संत पेत्रुस महागिरजाघर के भीतर दफनाए गए हैं। पिछले 200 वर्षों में 2 परमाध्यक्ष संत पापा पीयूस 9वें संत लॉरेंस गिरजाघर में और उनके तत्काल उत्तराधिकारी संत पापा लियो 13वें संत जॉन लातेरन महागिरजाघर में दफनाए गए थे, और सदियों से विभिन्न परमाध्यक्षों को विभिन्न इतालवी शहरों में, फ्रांस में और यहाँ तक कि जर्मनी और यूक्रेन जैसे दूर दराज के स्थानों में भी दफनाया गया। डोनाल्ड ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस 8वें रोमन परमाध्यक्ष हैं, जिनका अंतिम विश्राम स्थल संत मरिया मेजर महागिरजाघर की दीवारों के भीतर स्थित है। 2 परमाध्यक्षों में विशेष रूप से डोमिनिकन पीयूस पंचम और फ्रांसिस्कन संत पापा सिक्स्तुस पंचम के साथ पहले जेसुइट परमाध्यक्ष संत पापा फ्रांसिस भी शामिल हुए हैं, तो कई मायनों में यह धर्म समाजों के लिए विशेष रूप से अनुकूल जगह है। हालांकि उन्होंने आगे कहा, धन्य कुंवारी मरियम को समर्पित रोम का सबसे बड़ा और सबसे पुराना महागिरजाघर एक विशेष मरियम भक्ति से भी चिन्हित है, भक्ति जिसे संत पापा फ्रांसिस और रोमन लोगों द्वारा सालुस पोपोली रोमानी के शीर्षक के तहत माता मरियम के प्रतीक को बहुत प्यार और महत्व दिया जाता है। संत पापा को सालुस पोपोली रोमानी आइकन वाले पॉलिन चैपल के ठीक बगल में दफनाया गया है, और दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के अंतिम संस्कार से ठीक पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मुलाकात की। यूक्रेन में रूस के युद्ध की शुरुआत से ही संत पापा फ्रांसिस ने शांति लाने में मदद के लिए लगातार मध्यस्थता की पेशकश की। उन्होंने लगभग हर सार्वजनिक बैठक में युद्ध को समाप्त करने की अपील की। शनिवार को संत पापा फ्रांसिस के अंतिम संस्कार से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हुई। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने चर्चा को बहुत उत्पादक बताया। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यह एक अच्छी बैठक रही। उन्होंने कहा कि दोनों ने एक एक करके बहुत चर्चा की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने जो कुछ भी कवर किया है उसके परिणाम की उम्मीद है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।